भो मित्रगणाः नमस्करोमि तथा च रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चे स्वागतं व्याहरामि। आगच्छन्तु शृण्वन्तु शिवमहिम्नस्तोत्रस्य अद्यतनं पाठम्। अद्य अहं शिवमहिम्नस्तोत्रस्य द्वे श्लोकौ आरम्भं करोमि। कविः पुष्पदन्तः लिखति, स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदिस्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैतित्वा मद्धा बतवरदमुग्धा युवतयः। अर्थात, हे मित्रगण, मैं नमस्कार करती हूँ। रेडियो मधुबन के श्राव्य मंच में आपका स्वागत है और आज हम शिवमहिम्न स्तोत्र के अगले श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का नया श्लोक मैं आरंभ करती हूँ। इस श्लोक में पुष्पदंत ने फिर एक बार एक नई कहानी हमारे सम्मुख रखी है जो कि शिव चरित्र से संबंधित है। कथा यूं है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत अधिक तपस्या की, यम निरत अर्थात बहुत यम नियमों का पालन किया, बहुत ही सात्विकता से और अपरिग्रह से रही, बहुत कठिन तपश्चर्या की। इस प्रकार वह यम में निरत रही और उस तपश्चर्या के कारण उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। लेकिन भगवान शंकर अभी भी जताना नहीं चाह रहे थे कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तो वे अपनी समाधि में लीन मग्न ऐसे ही रहे। और फिर देवों को भी लगा कि पार्वती को उसकी तपश्चर्या का फल मिले, भगवान शंकर उससे विवाह करने के लिए मान जाएं और दोनों का विवाह संपन्न हो। तो शिव जी के अंदर काम भावना जगाने के लिए उन्होंने कामदेव को प्रेरित किया कि तुम अपने बाण चलाओ और शिव जी की तपस्या भंग करो और उनके मन में पार्वती के प्रति काम भावना जगाओ। पुष्पायुध अर्थात कामदेव जो कि अपने बाण लोगों पे चलाता है, और वो बाण भी कैसे हैं, तो पुष्प अर्थात फूलों के समान सुगंधित कोमल, इस प्रकार वो बाण जो कि बड़ा तीखा दर्द उत्पन्न कर देते हैं, जिसके भी लग जाए उसे दर्द तो बहुत देते हैं। लेकिन जब उसने शिव जी पर वही बाण चला करके उनकी समाधि भंग करनी चाही और बाण चला दिया, तो शिव जी ने आंखें खोली और अपने तीसरे नेत्र को भी खोला और कामदेव वहीं के वहीं भस्मसात हो गया। तो इससे किसी को भी शिव जी के सामर्थ्य का अनुमान हो जाना चाहिए। लेकिन पार्वती की तपश्चर्या से शिव जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना महेश्वर का रूप बदल करके अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया, अर्थात उनके आधे शरीर में पार्वती का रूप उन्होंने धारण कर लिया। इतने अधिक वे पार्वती की तपश्चर्या से प्रभावित हुए और पार्वती के साथ विवाह करने का मन भी बना लिया था, तो उसी के प्रतीक के रूप में उन्होंने पार्वती की आधी देह को अपने शरीर के आधे हिस्से में धारण कर लिया, इसलिए वह अर्धनारीश्वर कहलाए। तो इस श्लोक में इसी कथा को पुष्पदंत वर्णन करता है और कुछ थोड़ी सी शरारत भरी कौतुक भरी बात भी अपनी तरफ से कहता है। स्वलावण्याशंसा, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये पार्वती के विषय में है कि स्वलावण्य अपने सौंदर्य के लिए जो अभिमान में रहती थी, रूप गर्विता थी ऐसी पार्वती, और हे पुरमथन अर्थात हे त्रिपुरारी, पार्वती ने यह स्वयं देखा कि तुम्हारे सम्मुख पुराहा अर्थात सम्मुख जो खड़ा हो गया था पुष्पायुधम अर्थात कामदेव, जो कि ध्रुत धनुषम अर्थात उसके हाथ में उसका वह प्रसिद्ध धनुष भी था जिसके बाणों से वह सबको कामवश कर देता था, मोहित कर देता था, ऐसे धनुषधारी पुष्पायुध को जब तुम्हारा सामना करना पड़ा, जब तुम्हारे सम्मुख रहना पड़ा, तो वह तृणवत अर्थात एक तिनके के समान प्लुष्टम अर्थात भस्मसात हो गया। और यह पार्वती ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, दृष्ट्वा अर्थात देखने के बाद भी, क्योंकि उस समय पार्वती वहीं पर विराजित थी। तो यह सामर्थ्य तुम्हारा देखने के बाद भी, क्योंकि देहार्ध में तुमने पार्वती को धारण कर लिया है, अर्ध नारीश्वर का रूप ले लिया है, इसलिए यदि पार्वती ये सोचती हो कि तुम तो उसके अधीन हो गए, स्त्रैण हो गए, स्त्रैण अर्थात स्त्री के अधीन, स्त्री की ही बातों से चलने वाला, अपनी पत्नी की ही बातों को पूर्णतया स्वीकारने वाला, उसी की बुद्धि से चलने वाला, तो यदि पार्वती सोचती हूँ कि तुम स्त्रैण हो गए, उनके अधीन हो गए, और चूंकि रूप गर्विता तो वो है ही, अपने लावण्य का अभिमान भी है, तो अगर यह तुम्हें स्त्रैण समझती है तो पुष्पदंत कहता है, हे वरद, मुझे कहना पड़ेगा कि बत मुग्धा युवतया, मुझे युवतियों के बारे में ये कहना पड़ेगा कि वे अद्धा अर्थात निश्चय ही वे मुग्ध होती हैं, अर्थात भ्रम में रहती हैं, अबूझ होती हैं, और वे थोड़ी सी अपने अभिमान में ही भरी रहती हैं, और सच्चाई से वो दूर हो जाती हैं, और वे मान बैठती हैं कि तुम स्त्रैण हो सकते हो, क्योंकि तुम स्त्रैण तो हो नहीं, तुम अति सामर्थ्यवान हो कि केवल तीसरी आंख खोल देने से ही तुमने ऐसे कामदेव को जला दिया जिसके बाणों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। तो इसी बात से हालांकि तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय मिलता है, लेकिन अगर पार्वती अपने रूप के अभिमान में ये सोचती हो कि तुम पार्वती के अधीन हो गए हो, तो मुझे युवतियों की बुद्धि पर कुछ व्यंग करना ही पड़ेगा। अगले श्लोक में पुष्पदंत कहता है, श्मशाने वाश क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराः चिताभस्मालेपः स्त्रगपिनृकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। यहाँ पर कवि ने शिव जी के रहन सहन का वर्णन किया है। श्मशाने वाश क्रीडा, ये संधि है फिर से, श्मशानेषु आक्रीडा, अर्थात श्मशान ही तुम्हारे क्रीडा का आंगन है, श्मशान में तुम क्रीडा करते हो, वहीं तुम रममाण होते हो। स्मरहर, और कामदेव को तुमने भस्म कर दिया, स्मर अर्थात कामदेव, उसको तुमने भस्म कर दिया, और पिशाचाहा सहचराहा, और तुम्हारे सहचर कौन है, तो भूत पिशाच ये तुम्हारे सहचर हैं, और चिता भस्मा लेपहा, और जो चिता का भस्म है वही तुम अपने पूरे शरीर पर, देह पर लेप के समान धारण करते हो। स्त्रग अपि नृक रोटी, स्त्रक अर्थात गले की माला, तो तुमने गले की माला भी कौन सी पहनी है, वो ऐसी है जो नृक रोटी, जो मनुष्य की खोपड़ियों से बनी हुई है, तो स्त्रगपि नृक रोटी परिकरः, उसको तुमने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार अगर कोई तुम्हें देखे तो कहेगा कि अमंगल्यम शीलम, शील अर्थात इनका वर्तन चाल चलन, ये तो पूरा का पूरा अमंगलता से भरा हुआ है, अमंगल्यम पूरा अमंगलता से भरा हुआ है, जिसमें मांगल्य नहीं है वह अमंगल्यम, लेकिन ऐसा केवल प्रतीत होता है, यह कोई सच्चाई नहीं है, यह केवल प्रतीत होता है। तथापि स्मर्तॄणाम, स्मर्तॄणाम अर्थात जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनके लिए, हे वरद, हे वरदान देने वाले शिव, तुम परमम मंगलम असि, तुम उनके लिए परम मंगलमय हो। तुम्हारा जो रूप प्रतीत हो रहा है आँखों को, वह सच्चाई नहीं, उसके पीछे तुमने पूरे मांगल्य को अपने आप में समाया हुआ है, और जब भी कोई तुम्हारा स्मरण करता है तो उसे तुम उसी मांगल्य से भर देते हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। तो मित्रों, आज के दोनों श्लोक हम यहाँ समाप्त करते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र को हम आगे और पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर स्तोत्र है जो हमें शिव जी से संबंधित घटनाओं की कहानियां भी बताता रहता है। तो तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, और मुस्कुराते रहो। नमस्कार।